समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
शिव भोला भंडारी है तेरी शरण, शिव भोला भंडारी है तेरी शरण। स्वीकारो नमन स्वीकारो नमन स्वीकारो हे मेरा नमन। शिव भोला भंडारी है तेरी शरण।
सभी श्रोताओं को सावन शिवरात्रि की शुभकामनाओं के साथ नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। AIR FM गोल्ड पर कार्यक्रम आज सवेरे में आप सभी सुनने वालों को मनोज और मेरी सहयोगी नीना अरकल मैथ्यू का नमस्कार और हार्दिक अभिनंदन।
नमस्कार मनोज, एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स ट्यून्ड इन टू आकाशवाणी FM गोल्ड ऑन 100.1 MHz एंड द आकाशवाणी नेटवर्क। Thousands of devotees across the country are observing Shravan Shivratri today, marking one of the holiest days in the Hindu calendar dedicated to Lord Shiva. Temples are filled with chants of Om Namah Shivaya as worshippers gather to perform special pujas, offer sacred water and milk to Shivlingams, and observe day-long fasts. On this occasion, convert pilgrims are arriving in huge numbers to offer prayers to Lord Mahadev at Shiv temples. And today, Manoj, we bring you our daily news magazine program, Aaj Savere, wherein we share the latest in national and international news, metro city updates, as well as some historical information related to this day. So let's begin with the headlines.
Ji, भारत ने अपने हवाई क्षेत्र में पाकिस्तानी विमानों की आवाजाही पर प्रतिबंध 23 अगस्त तक बढ़ा दिया है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने बताया कि पाकिस्तानी विमानों के भारतीय हवाई क्षेत्र में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने वाले नोटिस टू एयरमैन को आधिकारिक तौर पर 23 अगस्त 2025 तक बढ़ा दिया गया है। उन्होंने कहा कि ये निर्णय रणनीतिक दृष्टिकोण और मौजूदा सुरक्षा प्रोटोकॉल के अनुरूप है। ये कार्रवाई पाकिस्तान के अपने हवाई क्षेत्र में भारतीय उड़ानों पर रोक लगाने के पहले लिए गए फैसले के बाद की गई है। पाकिस्तान ने भारतीय एयरलाइनों द्वारा संचालित उड़ानों के लिए अपने हवाई क्षेत्र को बंद करने की अवधि एक और महीने 24 अगस्त तक बढ़ा दी है। इस बीच 23 से 25 जुलाई को भारत पाकिस्तान सीमा पर राजस्थान में होने वाले वायुसेना अभ्यास के लिए भी नोटिस टू एयरमैन जारी किया गया है। भारतीय वायुसेना राजस्थान में बाड़मेर से जोधपुर तक के क्षेत्रों को कवर करते हुए एक बड़ा सैन्य अभ्यास करने के लिए तैयार है।
Prime Minister Narendra Modi will embark on a four-day official visit to United Kingdom and Maldives today. In the first leg of his visit, he will hold discussions with his UK counterpart Keir Starmer and call on King Charles III. Briefing media in New Delhi, Foreign Secretary Vikram Misri said, Prime Minister Modi will also interact and with business leaders of both the countries.
This visit will give both leaders the opportunity to review the entire gamut of the bilateral relationship and discuss ways to strengthen it further and also discuss issues that are of regional and global relevance. The India-UK partnership was upgraded to a comprehensive strategic partnership in 2021 and since then has seen regular high-level political exchanges, and both sides remain committed to taking this partnership to even higher levels.
According to Akashvani News, India's High Commissioner to UK Vikram Kumar Doraiswamy said that the upcoming visit will be beneficial for both countries.
Prime Minister's consistently held the view that we must build ties with traditional and important partners. Making a short but really focused trip suggests to us that the Prime Minister places great emphasis on getting this relationship, not just to maintain it at its current trajectory, but to lift it to its next level.
Correspondent covering the Prime Minister's visit has filed this report.
calling it an ambitious document, Mr. Doraiswamy said that the free trade agreement would build a new partnership more focused on futuristic stuff. He said Prime Minister Modi is so much committed to the relationship between both the countries and wants to take it forward. On meeting with King Charles, Mr. Doraiswamy said that Mr. Modi and the King has lot many things in common, including holistic health and environment, and will be meeting on July 24. The signing of the FTA would not only strengthen bilateral economic ties, but may also serve as a major factor for India to have more such agreements with other developed countries in future. Rajesh Bali, Akashwani News, London.
Second leg of his visit, Prime Minister will undertake a state visit to Maldives from 25th to 26th July on the invitation of Maldivian President Mohammad Mohizul. When it comes to almost all the music lovers across the world, either like to learn it a little bit at least or love to sing it. Ghazal maestro Jagjit Singh ruled not only Indian hearts but left a big mark in many countries over the world too. More from our correspondent from London.
When I met this English-speaking Afghanistan-born British gentleman, Massey, in London, it felt like apna hi hai. Our conversation led us to common thing between us, that was Ghazal, and that too by none other than the legendary maestro Jagjit Singh, aka Jaggu Dada, as he was fondly called by his fans. Massey told me that he has learned Indian classical music from his guru, Tausif Akhtar, who himself is Jagjit Singh's disciple. Let's listen to Massey about his love for Indian music and cultural vibes we share.
My guru is Tausif Akhtar, who is a great student of Jagjit Singh, bless his soul. So I just met Mr. Tausif Akhtar in London and I saw his work online and I just instantly fell in love with his voice and his style. So I decided to approach him online and ask if he wanted to teach me. And luckily, in my case, he said, okay.
So you learn from him this classical music?
Yes, Indian classical music. And we started from the alphabets and then we moved to thats.
So what took you to listen to Jagjit Singh and appreciate his ghazals?
I think he's got this magical voice, very soft. You know, it's so soothing to everyone's ear. So I don't think there is anybody in the world who knows a little bit about Indian classical and ghazals. There's nobody who doesn't know about Jagjit and there's nobody who doesn't love Jagjit.
As we say, music has no boundaries. This suggests that music's reach and impact transcend geographical, cultural and even emotional limitations. This is Rajesh Bali for Akashwani News from London.
देश के सबसे बड़े केंद्रीय मजदूर संघों में से एक भारतीय मजदूर संघ आज अपनी स्थापना के 70 वर्ष पूरे करने जा रहा है। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में भारतीय मजदूर संघ के अध्यक्ष हिरणमय पांड्या ने कहा कि 70 वर्षों में संगठन ने श्रम अधिकारों से आगे बढ़कर व्यापक सामाजिक सरोकारों से जुड़ते हुए अपना दायरा बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में संगठन के साथ 6,500 से अधिक ट्रेड यूनियन पंजीकृत हैं। श्री पांड्या ने कहा कि संगठन देश की महिला और युवा श्रमिकों का सक्रिय रूप से समर्थन कर रहा है।
Bharatiya Mazdoor Sangh president highlighted that in this emerging era of technology, the organization is emphasizing on human-centric growth, focusing on providing jobs to the workers and opening industrial units.
अब ये देखना है कि नई टेक्नोलॉजीज आती है उसका स्वीकार करना पड़ेगा, आवश्यक भी है, करना चाहिए, लेकिन उसके साथ 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 ये भी ध्यान रखें कि हम किस प्रकार का विकास करें, किस प्रकार की अभी आर्थिक स्थिति ले और किस प्रकार की टेक्नोलॉजी ले। ये हमने कहा है ह्यूमन सेंट्रिक ग्रोथ होना है, मतलब मजदूर को भी रोजगार मिले और इस प्रकार से उद्योग भी फले।
प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए नामांकन की अंतिम तिथि 15 अगस्त तक बढ़ा दी गई है। राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर आवेदन प्राप्त करने की प्रक्रिया 1 अप्रैल से शुरू हो गई थी। ये पुरस्कार वीरता, समाज सेवा, पर्यावरण, खेल, कला और संस्कृति तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर पहचान के पात्र बच्चों को दिए जाते हैं। 5 वर्ष से अधिक और 18 वर्ष से कम आयु का कोई भी बच्चा इन पुरस्कारों के लिए पात्र है।
A total of 6 crore individuals has been screened for sickle cell disease under the National Sickle Cell Mission. Among those screened, 2,15,000 individuals diagnosed with disease and over 16 lakh carriers have been identified. According to the Ministry of Health and Family Welfare, states including Madhya Pradesh, Gujarat, Rajasthan, Telangana, Karnataka and Uttarakhand have demonstrated significant progress by achieving a high percentage of screening relative to their targets. Wavex Startup Accelerator under the Ministry of Information and Broadcasting has extended the deadline for prototype submission for its Bhasha Setu Challenge. The last date to submit entries is now 30th of this month. Bhasha Setu Challenge invites startups to build AI-powered tools for real-time translation, transliteration, and voice localization across any 12 Indian languages. This initiative aims to accelerate real-time language translation.
मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित, बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद में आज बिजली चमकने और तेज हवाओं के साथ भीषण वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कहा कि असम, मेघालय, छत्तीसगढ़, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और तेलंगाना में भी बहुत तेज वर्षा हो सकती है। वहीं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, माहे, कोंकण, गोवा, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में कहीं कहीं तेज हवाएं चल सकती हैं।
नाउ न्यूज फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट्स।
In a thrilling conclusion to a three-match women's one-day international cricket series, India defeated England by 13 runs in the final game at Chester Lee Street last night, sealing the series 2-1. Batting first after winning the toss, the Indian team posted an imposing total of 318 for 5 in the allotted 50 overs. In response, England fought hard but ultimately fell short, finishing 13 runs behind India's total. England women scored 305 in 49.5 overs. India's captain Harmanpreet hit brilliant 102 runs off only 84 balls. Kranti Gaud finishes with 6 wickets. Harmanpreet has been declared as the player of the match and also player of the series for her outstanding performance. In men's cricket, India and England head into the fourth test at Old Trafford, Manchester starting today. Currently, India is trailing 1-2 in the five-match test series. The match will start at 3:30 p.m. Indian Standard Time. In another match, Bangladesh secure their maiden T20I series with a dramatic win over Pakistan, edging out the visitors by 8 runs in a tense second match at a packed Sher-e-Bangla National Stadium in Dhaka yesterday. The hosts, buoyed by a composed bowling display and a late batting charge, now hold an unassailable 2-0 lead in the three-match series. Batting first, Bangladesh scored 133 runs all out in 20 overs. In reply, Pakistan were all out scoring only 125 runs in 19.2 overs. In football, Kolkata giant East Bengal FC will take on debutant South United FC in the opening match of the 134th edition of the Durand Cup at Kolkata's Vivekananda Yuva Bharati Krirangan today. The 16-time Durand Cup winners are placed in Group A alongside South United FC, Namdhari FC and Indian Air Force FT. This is Akhila, Akashwani News, Delhi.
अब महानगरों के समाचार।
यस मनोज, स्टार्टिंग विद चेन्नई। ग्रेटर चेन्नई कॉरपोरेशन कमेंस्ड अ क्लीनअप प्रोग्राम एट मरीना बीच ऑन मंडे। At least 100 workers were deployed for garbage collection with regular coordination to ensure uninterrupted operations. Additionally, the civic body deployed all-terrain vehicles for litter collection and installed awareness boards at Marina Beach. The corporation also plans to impose penalties on those who litter and appoint conservancy inspectors equipped with POS machines.
दिल्ली सचिवालय में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कल कई अहम निर्णय लिए गए। हमारे संवाददाता ने बताया कि बैठक में कैबिनेट मंत्रियों और संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। पेश है एक रिपोर्ट।
सरकार ने ओलंपिक, पैरालंपिक, एशियाई खेल, पैरा एशियाई खेल, कॉमनवेल्थ गेम्स, पैरा कॉमनवेल्थ गेम्स, राष्ट्रीय और राष्ट्रीय पैरा खेलों में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को दी जाने वाली नकद इनामी राशि में बढ़ोतरी की घोषणा की है। अब ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने पर 7 करोड़, रजत पदक जीतने पर 5 करोड़ और कांस्य पदक जीतने पर 3 करोड़ रुपए इनामी राशि के तौर पर दिए जाएंगे। दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष कुमार सूद ने बताया कि स्वर्ण और रजत पदक विजेताओं को ग्रुप ए की नौकरी दी जाएगी, जबकि कांस्य पदक विजेताओं को दिल्ली सरकार में ग्रुप बी की नौकरी दी जाएगी।
एशियन ओलंपिक गेम्स में गोल्ड और सिल्वर मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को दिल्ली सरकार आने वाले समय में ग्रुप ए की नौकरी देने के लिए वचन देती है और ब्रॉन्ज जीतने वाले खिलाड़ी को दिल्ली में ग्रुप बी की नौकरी देने का वादा दिल्ली की इस कैबिनेट ने किया है और पैरालंपिक गेम के हर कैटेगरी का मेडल लेने वाले को ग्रुप बी की नौकरी देने का काम दिल्ली की सरकार करेगी।
बैठक में हुए फैसलों की जानकारी देते हुए श्री सूद ने कहा कि बैठक के दौरान दिल्ली में स्कूली शिक्षा के लिए और दिल्ली के समग्र विकास के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।
दिल्ली की सरकार सर्वस्पर्शी विकास के लिए दिन रात कृत संकल्प है। डिजिटल एजुकेशन का बढ़ावा देने के लिए स्मार्ट क्लासरूम्स बनाने जा रहे हैं। सर्वांगीण विकास हो, होलिस्टिक डेवलपमेंट हो, इसकी दृष्टि से हमारी सरकार युवाओं को अनेक अवसर उपलब्ध कराने के लिए कृत संकल्प है।
कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री डिजिटल शिक्षा योजना को मंजूरी दी गई। इस योजना के अंतर्गत कक्षा 10 के मेधावी छात्रों को लैपटॉप प्रदान किए जाएंगे। बैठक में दिल्ली के सरकारी स्कूलों में डिजिटल ढांचे की कमी को दूर करने के लिए 175 सरकारी स्कूलों में नई सूचना और संचार प्रौद्योगिकी लैब स्थापित करने की भी मंजूरी दी गई।
मेट्रो न्यूज फ्रॉम बेंगलुरु। कर्नाटका चीफ मिनिस्टर सिद्धारमैया रिव्यूड द प्रोग्रेस ऑफ कुसुम बी प्रोग्राम दैट प्रोवाइड सोलर पंप्स सेट्स टू द फार्मर्स। द चीफ मिनिस्टर इन्फॉर्म दैट 40,000 सोलर पंप सेट्स विल बी इंस्टॉल्ड एंड ऑफिशियल्स हैव बीन आस्क्ड टू कैरी आउट द टास्क इन अ टाइम बाउंड मैनर। द स्टेट गवर्नमेंट हैज एलोकेटेड 752 करोड़ रुपीज फॉर द पर्पस। द मीटिंग ऑल्सो डिस्कस द इश्यू ऑफ अनऑथराइज्ड इरीगेशन पंप सेट्स।
अब मुंबई महाराष्ट्र की खबर। मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण MMRDA ने MMR विरासत संरक्षण सोसाइटी द्वारा समर्थित और द पीपल प्लेस प्रोजेक्ट द्वारा प्रकाशित चार भागों वाली विरासत पुस्तिका की श्रृंखला का विमोचन किया। नई विमोचित पुस्तिकाओं में हेत शाह और श्वेतल पाटिल द्वारा लिखित कल्याण ठाणे की सैर, पास्कल रोके लोपेस द्वारा लिखित वसई सोपारा विरार की सैर, मानसी चोकशी और ईसा शेख द्वारा लिखित मुंबा देवी डोंगरी की सैर और मिनाज अंसारी द्वारा लिखित मुंबई उपनगरों की सैर, बांद्रा और तटीय रास्ते शामिल हैं। एक आधिकारिक वक्तव्य में बताया गया है कि ये पुस्तिकाएं मुंबा देवी के पवित्र मंदिरों से लेकर वसई और सोपारा के प्राचीन व्यापार मार्गों तक ऐतिहासिक रूप से समृद्ध लेकिन अक्सर अनदेखे क्षेत्रों के गहन शोध आधारित किस्से और सजीव चित्रण प्रस्तुत करती है। प्रत्येक खंड में विरासत स्थलों की चुनिंदा सूचियां, आसानी से पढ़े जा सकने वाले नक्शे, पैदल मार्ग और गहन प्रासंगिक लेख शामिल हैं, जो उन्हें विरासत प्रेमियों, छात्रों और आगंतुकों सभी के लिए एक व्यावहारिक और ज्ञानवर्धक साथी बनाते हैं।
Time for Hyderabad Metro News. In Telangana, the number of zero fare tickets issued to women travelling in the Telangana State Road Transport Corporation buses under Mahalakshmi scheme, which provides free bus rides for women, crossed 200 crore mark. The passengers saved over 6,700 crore rupees. State Transport Minister P. Prabhakar informed that the reimbursement for the scheme is paid promptly by the government. Launched in December 2023, the scheme is applicable to women, children and transgender persons.
Ab Kolkata, Pashchim Bengal ki khabar. 134वें डूरंड कप का उद्घाटन आज कोलकाता के युवा भारती क्रीड़ांगन में होगा। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस फुटबॉल खेल आयोजन का उद्घाटन करेंगी। ईस्ट बंगाल आज साउथ यूनाइटेड एफसी के खिलाफ उद्घाटन मैच खेलेगा। फाइनल मैच 23 अगस्त को खेला जाएगा।
To have generally cloudy sky with light rain. The minimum temperature was 27 degrees Celsius and maximum will be around 33 degrees. Bengaluru is expected to have generally cloudy sky with moderate rain. The minimum temperature was 20 degrees Celsius and maximum will be around 27 degrees. Hyderabad is expected to have generally cloudy sky with a few spells of rain or thunder showers. The temperature will hover between a minimum of 22 degrees and a maximum of 28 degrees Celsius. And Manoj, what do we have from दिल्ली, मुंबई एंड कोलकाता?
जी, सबसे पहले दिल्ली के मौसम की बात। दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में सामान्यतः बादल छाए रहेंगे तथा मध्यम वर्षा होने का अनुमान है। अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। मुंबई की बात करें तो मुंबई में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और तेज बारिश का अनुमान है। न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। कोलकाता में सामान्य रूप से बादल छाए रहेंगे और एक या दो बार बारिश या गरज के साथ छींटे पड़ने का अनुमान है। न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है।
And Manoj, National Broadcasting Day is observed on July 23rd every year in India. The day aims to remind us about the impact of radio on our lives. This day also marks the start of organized radio broadcasts in the country by Akashvani. The radio served as the sole broadcasting medium before TV came into existence. On July 23rd, 1927, the India Broadcasting Company came into existence and became the first radio company in India. Soon after this, All India Radio came into being in April 1930 as the Indian Broadcasting Service. On June 8th, it was rebranded as All India Radio. Since 1927, radio has been an important part of people's lives in India. Akashvani has been serving to inform, educate and entertain the masses, truly living up to its motto, Bahujan Hitay, Bahujan Sukhay.
आज देश दुनिया में मनोरंजन के लिए एफएम रेडियो से लेकर टीवी इंटरनेट तक हर सुविधा मौजूद है, लेकिन आज से सिर्फ दो दशक पहले चले जाएं तो मनोरंजन के नाम पर सिर्फ आकाशवाणी और दूरदर्शन हुआ करते थे। देश में रेडियो प्रसारण की शुरुआत मुंबई और कोलकाता से की गई थी। इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सर्विस का राष्ट्रीयकरण 1930 में हुआ। स्थापना के करीब 30 साल बाद 1957 में इसका नाम बदलकर आकाशवाणी रखा गया। और अब बात करते हैं आज के इतिहास को लेकर। देश और दुनिया के इतिहास में 23 जुलाई कई कारणों से महत्वपूर्ण है। 1829 में आज ही के दिन अमेरिका के विलियम ऑस्टिन बर्ट ने टाइपोग्राफ का पेटेंट करवाया था, जिसने टाइपराइटर की नींव रखी।
In 1868, All England Lawn Tennis Club was founded as the All England Croquet Club, also known as the All England Club, is best known as a venue for the Wimbledon Championships, the only Grand Slam tennis event still held on grass.
1877 में आज ही के दिन हवाई में पहली टेलीफोन और टेलीग्राफ लाइन बिछाई गई।
In 1904, the Great Indian Peninsula Railway introduced first-class restaurant cars on its mail trains.
1881 में आज ही के दिन अंतर्राष्ट्रीय जिम्नास्टिक्स संघ ने खेल परिसंघ की स्थापना की। ये विश्व का सबसे पुराना खेल परिसंघ है।
INSAT-2B, an Indian multipurpose satellite, was launched on this day in 1993 by ISRO. It was the second satellite in the INSAT-2 series and was designed for telecommunications, television broadcasting and meteorological observations.
1974 में आज ही के दिन यूनान में सैन्य शासन का अंत हुआ। और अब बात करते हैं उन महान हस्तियों की जिनकी आज पुण्यतिथि या जयंती है।
Amy Jade Winehouse was an English singer and songwriter. Her debut album, Frank, was a critical success in the UK, followed by the album Back to Black that led to 5 Grammy Awards in 2008. Here's Back to Black by Amy.
आज पुण्यतिथि है महमूद की। उनका जन्म 29 सितंबर 1932 को मुंबई में हुआ था। वे फिल्म जगत के प्रसिद्ध हास्य अभिनेता थे। उनका पूरा नाम महमूद अली था। 3 दशक लंबे चले उनके कैरियर में उन्होंने 300 से ज्यादा हिंदी फिल्मों में काम किया। अपने बहुरंगी किरदारों से दर्शकों को हंसाने और गंभीर भूमिका कर रुलाने वाले महमूद अभिनय के प्रति समर्पित थे।
मेरी कहानी बहुत डरावनी है ना, आप नहीं सुन सकेंगे, लेकिन फिर भी सुनिए डैडी, क्लाइमेक्स सुनिए।
नहीं बेटे, नहीं बेटे, मैं नहीं चाहता कि तू यतीम हो जाए।
परवाह नहीं डैडी, आप मेरा क्लाइमेक्स सुन लीजिए। वो चुड़ैल बड़े बड़े नाखून लेकर आगे की तरफ बढ़ती हंसती हुई। गला पकड़ लेती, गला पकड़ के फिर बोलती है,
मैं हूँ घोड़ा ये है गाड़ी, मेरी रिक्शा सबसे निराली।
Daniel Jacob Radcliffe is an English actor who celebrates his birthday today. He rose to fame age 12 for portraying the titled character in the Harry Potter film series based on the novels by J.K. Rowling. Daniel Radcliffe made his acting debut at 10 years of age in BBC One's 1999 television film David Copperfield. He starred at all 8 films in the series, from Harry Potter and the Philosopher's Stone to Harry Potter and the Deathly Hallows Part 2. Let's listen to this excerpt from the movie.
You're a wizard, Harry.
I'm a what?
A wizard. And a thumping good one, I'd wager, once you trade up a little.
No, you've made a mistake. I mean, I can't be a wizard. I mean, I'm just Harry. Just Harry.
Well, just Harry. Did you ever make anything happen? Anything you couldn't explain when you were angry or scared?
आज जयंती है पंडित चंद्रशेखर आजाद की. उनका जन्म 23 जुलाई 1906 को हुआ था. भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के वे प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे. 17 वर्ष के चंद्रशेखर आजाद क्रांतिकारी दल हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन में सम्मिलित हो गए. दल में उनका नाम क्विक सिल्वर पारा तय किया गया. चंद्रशेखर आजाद घूम घूम कर क्रांति प्रयासों को गति देने में लगे हुए थे. आखिर वो दिन भी आ गया जब किसी मुखबिर ने पुलिस को ये सूचना दी कि चंद्रशेखर आजाद अल्फ्रेड पार्क में अपने एक साथी के साथ बैठे हुए हैं. 27 फरवरी 1931 को चंद्रशेखर आजाद के रूप में देश का एक महान क्रांतिकारी योद्धा देश की आजादी के लिए अपना बलिदान दे गया.
पंडित जी
सुखदेव राज भाग.
क्षमा करना मेरी मां, बस इतनी सेवा कर सका. वंदे मातरम.
Manoj, some of the inspirational quotes by Chandrasekhar Azad, which I would like to share over here, is, if someone is not devoted to the nation, then his life is a waste. And another one, Dushman ki goliyon ka hum samna karenge, Azad rahe hain, Azad rahenge.
Bahut badhiya. आज जयंती है शिव कुमार बटालवी की. उनका जन्म 23 जुलाई 1936 को हुआ था. वे पंजाबी भाषा के एक विख्यात कवि थे जो उन रोमांटिक कविताओं के लिए सबसे ज्यादा जाने जाते हैं जिनमें भावनाओं का उभार, करुणा, जुदाई और प्रेमी के दर्द को का बखूबी चित्रण है. आइए सुनते हैं उनका लिखा एक गीत फिल्म डंकी से.
पुछ दियो हाल फकीरा दा, किंज दसिए दुख तकदीरा दा, किंज दसिए दुख.
आज जयंती है विद्वान, गणितज्ञ, दार्शनिक और राष्ट्रवादी बाल गंगाधर तिलक की. उनका जन्म 23 जुलाई 1856 को रत्नागिरी, महाराष्ट्र में हुआ था. उन्होंने भारत की स्वतंत्रता की नींव रखने में सहायता की. उन्होंने इंडियन होम रूल लीग की स्थापना सन 1914 ईस्वी में की और इसके अध्यक्ष रहे तथा 1916 में मोहम्मद अली जिन्ना के साथ लखनऊ समझौता किया जिसमें आजादी के लिए संघर्ष में हिंदू मुस्लिम एकता का प्रावधान था.
He was also known as Lokmanya, Manoj. Lokmanya means accepted by the people.
जी जी जी.
Sarvanand Sivakumar, known professionally as Surya, is an Indian actor and film producer who primarily works in Tamil films. One of the highest paid Tamil actors, Surya is considered as one of the finest actors of Indian cinema. Let's listen to this song from his movie.
आज जन्मदिन है मोहन आगाशे का. उनका जन्म 23 जुलाई 1947 को हुआ था. वे एक भारतीय रंगमंच कलाकार, फिल्म अभिनेता और मनोचिकित्सक हैं. आइए सुनते हैं उन पर फिल्माया एक गीत. और अब समय आपसे विदा लेने का, तो अनुमति दीजिए कार्यक्रम आज सवेरे यहीं समाप्त करने की। अगर आप आज सवेरे कार्यक्रम दोबारा सुनना चाहते हैं तो लॉग ऑन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट।
नमस्कार
नमस्कार।